بسم الله الرحمن الرحيم. جوان صورتوں کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے اور ہم اپنے اس دور کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اگر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کل کی بات تھی. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور خصوصاً جو قم جا رہے ہیں ان کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ قم میں وقت اور تیزی سے گزرتا ہے. تو اگر توجہ کم ہو گئی تو اس کا نقصان آپ واپس ہندوستان لے آئیں گے, اور اگر آپ نے اپنے اوپر کام کر لیا تو پھر جو یہاں کی برائیاں ہیں اس کو سمجھ پائیں گے. دین کی تعلیم دوسری تعلیمات سے بہت مختلف ہوتی ہے, بہت مختلف ہوتی ہے. اس میں انسان کو دین کی تعلیم میں سب سے پہلے رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر دین اس پر اثر نہیں کرتا تو اس کے ذریعے سے کسی پر اثر ہونے والا نہیں ہے, آسان نہیں ہے. جو خود مقناطیسی کیفیت ایجاد نہیں کرے گا وہ دوسرے کو وہ میگنیٹزم نہیں دے پائے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب اس ارادے سے حرکت ہوتی ہے کہ ہم جا کر کوئی چیز حاصل کر کر واپس آئیں گے, تو آج کا دور اس چیز کو کہ جو آپ لوگ حاصل کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے اس پر میں گفتگو کروں گا. آپ جو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, ہم جب 1983 میں لگ بھگ 34 سال پہلے گئے تھے, انقلاب کو آئے ہوئے 5 سال بھی نہیں ہوئے تھے, انقلاب اسلامی, اور قوم ابھی تبدیل ہو رہا تھا, بالکل چھوٹا سا شہر تھا. مدرسے میں حمام بھی نہیں تھا تو باہر جانا پڑتا تھا, کبھی سردی میں, اور سردی کبھی وہاں زیادہ ہوتی ہے تو تیل بھی مہیا نہیں ہوتا تھا کمروں کو گرم کرنے کے لیے. اور وہاں پر کمروں کو گرم نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ 8 ڈگری کبھی 10 ڈگری مائنس چلے جاتا ہے ٹیمپریچر, تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. آج قم بالکل بدل گیا ہے, بہت بڑا شہر ہو گیا ہے, ہاسٹلز جو ہیں وہ بہت اعلیٰ ہو گئی بن گئی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو مادی طور پر آپ کو سہولتیں فراہم کریں گی. تعلیم بھی اس زمانے میں ایک پیٹرن تھا, اس پر کام ہوتا تھا. 9 سال کا کورس تھا, ابتدا آپ کو عربی گرامر, اس کے بعد منطق, کچھ عقائد, پھر اس کے بعد اصول فقہ, اور پھر فقہ, جورسپروڈنس اور اسلامک لا, یہ پڑھایا جاتا تھا. آگے ہو چل کر جو ہے فلسفہ, اور اس کے بعد اصول فقہ کی اور فقہ کی بڑی کتابیں رسائل مقاصد, اور آخری میں کفایہ. یہ 9 سال کا ایک کورس ہوا کرتا تھا, ساتھ میں اس کے دوسرے اور کورس ہوتے تھے کہ جو آج جیسی نوعیت بالکل نہیں رکھتے تھے. کچھ لوگ اپنا گھر پر پڑھا لیتے تھے اونچی کتابیں, اور تعداد جو حوزے کی تھی وہ بھی بہت کم تھی. آج ہر چیز آرگنائز ہو گئی ہے, آپ کو جو سرٹیفیکیشن ہوتا ہے, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, اس کو یونیورسٹی کے سرٹیفکیٹ لیول سے لنک اپ کر دیا گیا ہے. یہ کوئی چیز ہمارے پاس اس وقت نہیں تھی, हम जब पलट कर आए 9 साल के एग्जाम लिखने के बाद 4 साल दरसे खारिज, तो हमको एक छोटा सा लिखकर मिल गया कि ये दरसे खारिज शिरकत किए हैं और 4 साल के लिए इन्होंने किया है, और उसके बाद जो है किफाया की जो इम्तिहान था उसका नंबर और एक छोटा सा सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ बस, तो वो दौर वो था। आज जब आप देखते हैं और उस दौर से अगर मुकायसा करते हैं, कंपेयर करते हैं, मादियत मेटीरियलिज्म शायद तारीख में इन 30-34 साल में, कभी भी तारीख में इंसानों की बशरियत की, मादियत ने इतनी तेजी से सबखत नहीं की थी, इस तेजी से आगे नहीं बढ़ी थी। आप लोग वो दौर नहीं जानते। हमारे यहां टेलीविजन नहीं था इंडिया में, कुछ कुछ बड़े शहरों में टेलीविजन 1970s में आया, हैदराबाद जैसे बड़े शहर में 78 में आया, इंडिया में कलर टेलीविजन 1982 में आया, तो भी 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता था। ये जो चैनल्स आप 90s से शुरू हुए और 24 घंटे वाले चैनल और न्यूज चैनल और टेलीविजन में मुख्तलिफ सीरियल्स बताने वाले चैनल, इनका कोई तसव्वुर भी नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे। इंटरनेट 90s में आया है, बाद में ग्रो हुआ है, गूगल और व्हाट्सएप ये वो तो बिल्कुल हाल ही। तो इस हद तक जो भी उलूम और टेक्नोलॉजी में तरक्की हुई है वो फौरन की फौरन हम देखते हैं कि इंसान के मादे से इस्तेफादे को बढ़ाती गई है। मादे से इस्तेफादे को, मेयार जिंदगी भी इतना ऊंचा नहीं था जितना भी था, आम आदमी और खास आदमी में खास फर्क नहीं था। आज पैसे वाला कहां चला गया और गरीब कहां रह गया, वो भी ये 34 साल में हम जो देखते हैं वैसा भी शायद तारीख में कभी, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। इस हालत में जबकि मादियत शिद्दत पैदा कर चुकी है, जिसके पास पैसा है वो अकलमंद भी नजर आता है, चाहे वो पैसा कोशिश के जरिए आया हो या धोखे के जरिए आया हो, पैसा अपनी खुद की एक हैसियत पैदा कर लिया है, वो आगाह हो गया है और हम गुलाम हो गए। ऐसी सूरत हाल में आप लोग खुम जाने का आजम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसर्रत की बात है कि आप लोग कर रहे हैं, मगर दिल में टटोल लें कि दिल में इसी मादियत की हरकत को आप खुम में जाके तय करेंगे या आपका इरादा मानवियात है, आप अपनी रूह को तैयार करने के लिए खुम जा रहे हैं या आप उन चीजों को याद करने सीखने के लिए जा रहे हैं कि जो आपको मादी तरक्की देंगे। जो शख्स इस नीयत से जाता है, मैं बिल्कुल वाजे कर बोल रहा हूं, जो इस नीयत से जाता है कि हम खुम से मादी तरक्की के अजबाब हासिल कर वापस आएंगे, वो अलग तरीके से पढ़ता है खुम में। और जो सोचता है कि नहीं, मैं यहां पर मादी अजबाब हासिल करने के लिए नहीं आ, उसके लिए तो हिंदुस्तानी ठीक था, मैं कुछ कर लेता, वहां पर पढ़ लेता, लिख लेता, कारोबार कर लेता या और कोई कुछ काम कर लेता तो मुझे मादी तरक्की मिल जाती है। मैं यहां पर इसलिए जा रहा हूं कि मुझे मादे के आगे सोचना है। अगर इस नीयत से जाते हैं तो फिर एक दूसरी ही दुनिया आपको खुम में मिलेगी, एक दूसरी ही दुनिया आपको खुम में मिलेगी। नहीं तो अगर मादियत मटेरियलिज्म के लिए जा रहे हैं तो वो खुम आपके लिए खुम ही नहीं रहेगा, आप वहां से कयाम करने वाले नहीं बनेंगे, लोगों को कयाम की तरफ आगे ले जाने वाले नहीं रहेंगे, लोगों को सुलाने वाले बन जाएंगे। क्योंकि जो खुद सो गया है वो दूसरों को क्या जगाएगा। अल्लामा इकबाल का एक फारसी का शेर है कि कहते हैं कि मगरबी तहजीब और तमद्दुन वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मारा हुआ अपने आप को जिंदा समझता है, कुश्ते हो जिंदे दौनत खीशरा, इसका मारा हुआ अपने आप को जिंदा समझता है। तो मौत भी आ जाती है पर पता भी नहीं चलता है कि हम अल्लाह की नजर से मर चुके हैं। क्योंकि अल्लाह ने हमको जो हयात दी वो मादियत से आगे बढ़ने के लिए दी। इंसानी हयात का मफहूम ही वही है, ठीक है। कुरान की आयतें आपको मिल जाएंगी, मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, साफ साफ सी बात है। वरना बैल बना देता जो चढ़ते रहते, चार पेट बनाता उनके, जैसे हमारे भी ये खाते और फिर निकालते और फिर चापते और फिर खाते, चिड़िया जैसी चीज बना देता। चिड़िया अपने वजन का उतना दाना अपने दिन भर में खा लेती है। हम 60 किलो के अगर हों तो हम जितना खाते हैं 60 किलो खा लेते हैं क्या दिन में, ठीक है। 3 किलो को खा जाए तो शायद 4 दिन 5 दिन के बाद उसकी फातिहा पढ़ ली जाएगी, ठीक है। 3 किलो भी अगर कोई आदमी खाना खा ले, यानी 1/20th भी अगर हम जितना चिड़िया खाती है अपने वजन का खा लेते हैं तो हम मर जाएंगे। तो पता चला क्या, अल्लाह ने हमको मादियत के लिए पैदा नहीं किया, मानवियत के लिए पैदा किया। तो फिर बात यह होगी कि भाई अगर ऐसी बात है तो आप कह रहे हैं कि हमको भूखे मरना चाहिए। मैं मरने की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अल्लाह मरने की तरफ बुला नहीं रहा आपको। या अय्युह अल्लज़ीना आमनू इस्तजीबु लिल्लाहि वल रसूलिह इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम, वो तो आपको मौत की तरफ बुला ही नहीं रहा है, मरने के बाद भी मौत देता नहीं है, आपको हयात की तरफ बुला रहा है। अब समझना यह है कि वो हयात की तरफ बुला रहा है, हम हयात की तरफ भाग रहे हैं। हम जब हयात की तरफ भागेंगे तो वह हकीकतन मौत होगी, और वो जिसकी तरफ बुलाता है वह हकीकतन हयात होगी। सवाल अपने अपनी समझ का और यकीन का है, सवाल अपने अपने समझ का और यकीन का है। मैं एक मिसाल देता हूं, इंसान से अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज उसके लिए क्या है, वो क्या बोलेगा। अपनी मादी हयात के लिए पूछ रहा हूं, मादी हयात के लिए क्या है, आप लोग बोलिए। बिल्कुल ठीक कहा ना आपने। कभी आपने सोचा कि मुझे हवा की किल्लत हो जाएगी, कमी हो जाएगी हवा की मेरे पास। आदमी से सबसे चीज ले ली जाए तो सबसे आखिर चीज वो कहेगा कि मुझसे सांस ले लो, हवा ले लो, ठीक है। क्योंकि बिना खाए हुए भी, बगैर पानी के भी आदमी 15 से 20 दिन जिंदा रह जाता है, बेहोश हो जाएगा 3-4 दिन 5 दिन के बाद, लेकिन जिंदा जरूर रहेगा, ठीक है। लेकिन बिना हवा के कितनी देर, 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, 5 मिनट 10 मिनट दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और दिमाग मर जाता है और फिर दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। तो सबसे आपकी जरूरी चीज है आपकी हयात के लिए है, वो उसने कितने मकदार में रखी है कि आपको कभी भी किसी आकल को भी या कोई आज तक पागल को भी हमने नहीं देखा होगा कि जो ये सोचे कि मुझे हवा नहीं मिलेगी, ठीक है, और हवा के लिए तगोदो करे। मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद वाली जरूरत सबसे ज्यादा पानी। पानी भी आप किसी गरीब के घर चले जाइए, यहां आजू बाजू पानी मांगिए, वो पिला देगा, ठीक है। किसी की झोपड़ी में जाकर मांगिए, पिला देगा। पैसे की तवक्को करेगा ही नहीं, उम्मीद भी नहीं करेगा कि आप उसको एक गिलास पानी पीकर पैसे देंगे, और शायद आप भी पैसों की बात उससे नहीं करेंगे, भाई पानी लिया और पिया और चले गए, शुक्रिया कह देंगे। पैसों के अवस पानी आप मिनरल वाटर के नाम पर धोखे के साथ खरीदेंगे, लेकिन पानी आज भी गरीब को भी मुयसर है कि जो खुद पी सकता है और आपको हमको पिला सकता है। जो तो दूसरी अहम चीज थी वो भी आपको जिंदा रखने की, उसका जिम्मा भी अल्लाह ने ले लिया है। हवा की किल्लत ईजाद कर सकता था, पानी की किल्लत इस किस्म की कर सकता था, कहता है कुरान, मगर वो नहीं किया। अब आ गई बात गजा की, तो ये कहां से आपको तसव्वुर आ गया? हमको तसव्वुर आ गया कि गजा उसने हमारे लिए नहीं रखी है, हवा रख दी है, पानी रख दिया है, लेकिन गजा हमारे लिए नहीं रखी है, हमको खाना नहीं मिलेगा। इसने कहा था ऐसा नहीं हो। कुरान की आयत आकर कहती है मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मैं यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु इन्नल्लाह बालिगु अम्रे कुल्ली शैइन क़द्रा। सब आप लोग को पता है, हम जब घूम जा रहे थे हमको ये आयतें नहीं आती थी, हमको ये आयतें नहीं आती थी, हमने आयतें खुम में सीखी। तो आप लोग तो दो कदम चार कदम आगे जा चुके हैं, मगर हम जब खुम को जा रहे थे तो ना हमको ऐसे अफराद मिले कि जो आपको हाथ पकड़ कर ले जाएं, हमको ऐसे अफराद जरूर मिले कि जो जिन्होंने पूरी कोशिश की कि हम खुम न जाएं, और जब वापस आ गए तो अफसोस किया कि हमने इनको जाने क्यों दिया। ये माहौल से हम गए, तो आप लोग माशाल्लाह से खुश नसीब हैं एक उनवान से कि आपको ये पुरानी आयतें जो हम वहां पर सीखे वो आप पहले से जानते हैं, तो आप एक दूसरे दर्जे पर फायज हैं, अभी आगे चलकर और ऊंचे दर्जे पर फायज होंगे। तो जब अल्लाह ने हयात की तरफ बुलाने का, हयात के अस्बाब फराहम करने का, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए हमारे लिए रख दिया है, तो रोटी के लिए हम अगर फिक्रमंद हों, यह हमारा यहां पर सबका बैठना इस बात की दलील है कि हमको जिंदगी में खाना खिलाया गया है उस वक्त से कि जब हम एक मक्खी को भी भगा नहीं सकते थे, उड़ा नहीं सकते थे अपने ऊपर से। वो किसके जरिए हुआ? मां की ममता के जरिए से ही हुआ, ठीक है, बाप की मोहब्बत के जरिए से ही हुआ, लेकिन हुआ तो ये हमारा यहां पर बैठना इस बात की दलील है कि हमको खाना मिलता रहा है। ये क्या होता है कि ईमान जब आ जाता है इंसान को, वो एहसास ये करने लगता है कि भाई खाना नहीं मिलेगा। मां के पेट में खाना कौन देता था? अल्लाह ताला देता था। सबसे अच्छा रिस्क उसके बाद किसने फराहम किया? अल्लाह ताला ने फराहम किया। उसकी रहमत कब आकर रुक गई? कब आकर उसकी रहमत रुक गई? जैसे हमारे हाथ पैर मजबूत हो गए, हमें एहसास होने लगा कि अब अल्लाह की रहमत हम पर कम हो गई है। इसका कसूर हम हैं या इसका कसूर हम अल्लाह पर बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। तो पता चला कि जैसी रहमत जब हम मां के पेट में थी वो अगर हम उसके होते हैं तो वहां पर तो हमने किया कुछ नहीं था, तब भी थी। अब अगर उसके लिए कुछ करते हैं कुर्बतन इलल्लाह, तो वो रहमत इजाफा होगी या घटेगी? ठीक है, जो लोग यहां पर बैठे हैं जिसके बच्चे हैं, फर्जंद हैं, बच्चा अगर, या आप लोग अगर कोई छोटा आपका भाई भांजा भतीजा जिसको भी जो हो, कोई चीज अपनी लाकर आपको एक चॉकलेट दे देता है, ठीक है, आप ले लेते हैं, आपका इरादा जहन में क्या बनता है? इससे बेहतर चीज उसको दे दूंगा। आप खुश हो जाते हैं कि उसने जो चीज खुद खा सकता था वो आपको ऑफर कर रहा है। आप लेंगे या ना लेंगे उस हालत में होगा कि उसके लिए और कुछ है या नहीं है, ठीक है, वो एक अलग चीज। लेकिन जब आप लेंगे या नहीं भी लेंगे, वो एहसास खुद इस बात की दलील है कि जब आप एक इंसान होने के नाते अपने से छोटे की तरफ से एक चीज आपके सामने आती हुई देखते हैं, वह उन्वान मोहब्बत। अल्लाह को अगर इंसानों की मोहब्बत मिल रही हो, इनकुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह से ही बात रसूल की आती है, मैं शरीयत की तरफ अभी आया ही नहीं हूं, मैं खाली हुब्बे खुदा ही की तरफ हूं, अभी रिसालत पर नहीं आया हूं। अगर वो कैफियत हुब्बे खुदा की आ जाती है और हमारी नमाजें, हमारा अमल, इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन हो जाते हैं, तो फिर उसकी रहमत का तूफान आएगा या नहीं आएगा? नहीं आने का इम्कान नहीं है। जो हम मामूली इंसान होकर अपने छोटे का लिहाज दिल से रखते हैं, तो वो सबका खालिक रहमती वसीअत कुल्ला शय वाला, मेरी रहमत तमाम चीजों पर अहाता किए हुए है, वो किस तरह से हमको छोड़ देगा? वो देगा कि जो और किसी को नसीब नहीं होता है सिवाय अल्लाह ही से डायरेक्ट हासिल करने के, जो किसी अरबपति को भी नसीब नहीं होता, जिसको कुरान कहता है ये हयावान है, ये हकीकी जिंदगी है, वो जिंदगी की तरफ आप लोग हरकत कर रहे हैं। वो जिंदगी है कि जो मादियत के आगे जाने के नतीजे में मिलती है, और वो जिंदगी का अगर एहसास हो जाता है तो ये कायनात की पूरी दौलत अगर आपके पैरों पर लाके डाल दी जाए, एक सेकंड उससे इर्तबात आप काट लीजिए, एक सेकंड आप इनकार करेंगे। हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, आपसे कहा जाएगा कि एक सेकंड के लिए अगर आप इर्तबात इस तरीके पर, इस रविश पर, आपकी मावराए मादी या इलाही जो इर्तबात है, एक सेकंड के लिए आप कट कर दीजिए, हम आपको पूरी कायनात दे देंगे, आप कहेंगे ये और ये बराबर, वहां तक जाया जा सकता है, उसके आगे भी जाया जा सकता है। अल्लाह ने किसी के पैर नहीं बांधे। अल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये अल्लाह का रास्ता कभी भी ताकीद के साथ अल्लाह कह रहा है लनहदियन्नहुम सुबुलना, ताकीदों पर ताकीदें हैं। ताकीदें इसलिए है कि हम जल्दी बावर नहीं करते, जल्दी यकीन नहीं करते, करेगा या नहीं करेगा नहीं मालूम, चौरस्ते पर ले जाकर कहां छोड़ देता हमको पता नहीं है, फिर वहां पर हम हैरान हो जाएंगे तो बुलाएंगे किसको, अब तो मां बाप भी नहीं, हम तो बड़े हो गए हैं, बीवी को पुकारना तो अच्छा नहीं लगता, तो हमारा तो कोई सहारा नहीं रहेगा, ऊपर वाले रहे नहीं, नीचे वाले से मांग नहीं सकते, तो फिर अल्लाह कहां चले गया? हम अल्लाह को खोकर परेशान होते हैं, वो हमारे पीछे पीछे ढूंढते हुए आता है, उसका ढूंढना ही सबब बना रसूल और अहले बैत का। अगर बंदों को उसको पा लेना ना होता तो ये अंबिया आते ही नहीं थे। अल्लाह की ढूंढ का नाम पैगंबर होते हैं, अल्लाह की ढूंढ का नाम आइमा होते हैं, वो अपनी तलाश के लिए उनको भेजता है कि जाओ मेरे बंदों को, कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन्नार, और हमने तुम्हें वहां से नजात दे दी। तो एक एक कुरान की आयत आपको मुर्तबित होती नजर आएगी। हाफिज का एक शेर है, इल्म रॉ बर्तन जरी जनी मौरी बुआत, इल्म रॉ बर दिल जनी यौरी बुआत। इल्म को अपने तनपरस्ती पर अगर इस्तेमाल कर दोगे तो यह सांप बन जाएगा, मार बन जाएगा, और यही इल्म को अगर तुम अपने दिल पर दे मारोगे, दिल से मुराद यहां रूह है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए बेहतरीन मददगार हो जाएगा। अब आप लोग जो मादी दुनिया से हरकत कर रहे हैं, ये मादियत फैल रही है, शिद्दत से बढ़ रही है, मादी लोगों ही को कामयाब समझा जा रहा है, मानवियत का और रूही उलूम का फुकदान है, तो ऐसी हालत में जब अंधेरा और उजाला तकरीबन अलग अलग हो चुके हैं, जो हमारे दौर में उस वक्त नहीं था, मादियत ऐसी नहीं थी, मादियत की इंतहा हो सकती है, हम ख्वाब में नहीं सोच सकते थे, 1990 में भी नहीं सोच सकते थे, जो 20-25 साल में हुआ है। अब यह खत्तबैयना रुजदो मिनल गई वाली कैफियत हो गई है, आपकी अपनी चॉइस है कि करना क्या चाहते हैं, आपकी अपनी चॉइस है कि करना क्या चाहते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, हर छठा आदमी दुनिया में हिंदुस्तानी है, हर छठा आदमी, यानी आपको 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी में काम करने का मौका मिल रहा है। और भी जाके कीजिए काम अगर करना हो, लेकिन एक बिना पासपोर्ट बिना वीजे के, बगैर पासपोर्ट और वीजे के आप जाकर तकरीबन 1/6 ह्यूमन पॉपुलेशन को टारगेट कर सकते हैं। अब आप समझेंगे कि नहीं, हमको जरूरत ही नहीं है, हम अपने महल्ले को देखेंगे, हम अपने शिया बस्तियों ही को देखेंगे। अगर ये जहन लेकर जाएंगे तो वही जरूरत के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर आएंगे। जबकि कुरान की आयत है, इज़ा अख़ज़ अल्लाहुल मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताबा लतुबय्यिनन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूना। अल्लाह ने उनको कि जिनको उसने किताब दी है उनसे ये वादा ले लिया है, मीसाक ले लिया है कि वो यकीनन यकीनन लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों में सब शामिल हैं, लोगों में सब शामिल हैं। रसूल किसके दरमियान आए थे, मोमिनीन के दरमियान या मुशरिकीन के दरमियान? हमारे यहां तो कम से कम कुछ मोमिनीन और कुछ मुशरिकीन है या नहीं? गरचे उस दौर में भी कुछ मोमिनीन थे। अल्लाह ने कहा है कि कुरान में कि अल्लाह ने मिन्नत की है मोमिनीन पर कि उसने उनके दरमियान रसूल को भेजा। ठीक, तो अब हम अगर ये सोच कर जा रहे हैं कि हम एक छोटी सी महदूद ग्रुप में काम करेंगे, तो आप इस्लाम के मैसेज को अपने हिसाब से छोटा करते जा रहे हैं। इस्लाम का मैसेज आफाकी है। इंडोनेशिया, जो सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क माना जाता है, वहां पर एक भी जंग नहीं हुई, एक भी जंग नहीं हुई, और 90% से ज्यादा वहां की आबादी मुसलमान है, एक भी जंग नहीं हुई। जो लोग कहते हैं तलवार के जरिए, और वो पूरे जजीरे हैं, 1000 के करीब जजीरे हैं वहां पर। अच्छा, आपको ताजुब होगा कि सबसे बड़े मुबल्लिग कौन थे कि जो इतनी बड़ी तब्दीली में उनका बड़ा हिस्सा रहा। उनका नाम था मौलाना विष्णु, मौलाना विष्णु। मौलाना विष्णु हिंदू थे जब मुसलमान हुए और मौलाना कहलाने लगे, लोगों ने उनको मौलाना कहा, और उन्होंने जो तबलीग की वो सबब बना इंडोनेशिया में इस्लाम की तरवीज का। तो जब कोई गैर, जिसकी समझ इब्तदाई होगी, बहुत ज्यादा तफसीली नहीं होगी, वो जब इस्लाम समझकर समझा सकता है, तो आप हम क्या नहीं कर सकते कि जिसकी पैदाइश से हम इस्लाम सुन रहे हैं, और वो इस्लाम सुन रहे हैं जो पाकतरीन इस्लाम था। गरचे इज्तिमा में आकर वो शक्ल बिगड़ चुकी है, और वैसी कैफियत पाकिजगी की जो है युताहिरकुम तथीरा वाली थी, अल्लाह ने तो पाक रखा था जैसे कि पाक रखने का हक है, उनकी फिक्र को लेके हमने क्या किया हम जानते हैं। और अगर हम अपनी सोसाइटी की तरफ देखते हैं तो वो ईमान की कुदरत से हरकत करने वाली सोसाइटी नजर नहीं आती, बल्कि एक ऐसी सोसाइटी नजर आती है कि जिसके ईमान में इतनी मिलावट हो चुकी है कि ईमान कहां है और कुफ्र कहां है अलग अलग करना अब मुहाल सा हो गया है। ईमान जब मखलूत होता है तो अपनी वैल्यू खो देता है। दवा में सबसे मुश्किल जो चीज होती है वो 99% प्योरिटी के आगे ले जाना सबसे मुश्किल होता है। जब फिल्ट्रेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो सबसे मुश्किल मरहला प्योरिटी अब 99% तक ला ले, उसके आगे की प्योरिटी के लिए करना पड़ता है ताकि दवा का असर हो सके। तो जब एक मामूली एलोपैथिक दवा अगर 99% के लेवल पर असर नहीं कर रही है या कम असर कर रही है, तो ईमान जो उससे कई गुना बल्कि लामुतानाही तौर पर अलग और जुदा और बुलंद है, उसमें मिलावट अगर लाई जाएगी, उसकी हरकत होगी या नहीं होगी, ये प्योरिटी समझने के लिए आप लोग कुम जा रहे हैं। मिलावट तो यहां पर आपने देख ली, प्योरिटी को आप वहां समझने के लिए जा रहे हैं। प्योरिटी आपके अंदर नहीं रहेगी तो बाहर की प्योरिटी आप पर असर नहीं करेगी। आईना चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उस पर आप कोई चीज डाल दें उसके बाद चाहे कि वो अपनी खूबी जाहिर करे, तो लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे पहले उस पर से वो कपड़ा हटा दो, हम अपनी रूह पर खूब कपड़े मोटे मोटे पर्दे डाल देते हैं और उसके बाद तवक्को करते हैं कि अल्लाह की रहमत उसमें से नुफूज करके आए, जबकि आपसे अल्लाह की रहमत ये कह रही है कि तुम्हारे और मुझ में फासला ही नहीं है, ये पर्दे क्यों है। नहीं कुरान की आयतें क्या कहती है कुरान, इन्नी करीब उजीबु दावत दाई जदान, ठीक है मैं तो तुमसे करीब हूं, इजा सअलक इबादी अन्नी कुल इन्नी करीब। अब उजीबु दावत दाई, अच्छा अब दुआ क्या करते हैं हम, जिसके 100 वास्तों की जरूरत है, तवज्जो का मोहताज, मुझे ये दे दे ये दे दे ये दे दे ये दे दे ये दे दे, उसमें 100 वास्तों की जरूरत है, ठीक है पैसे दे दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे, ये सब वास्ते से होगी, शोहरत आएगी कैसे, लोग आपको मशहूर समझे, लोगों के मोहताज, ठीक। पैसा चाहिए किसी के जरिए से आएगा, या कम से कम कोई आपको खजाना भी मिले तो कोई बेचारा आपने मेहनत से वहां पर दफनाया होगा आपको मिलेगा, बिलाखिर कुछ ना कुछ वास्ता होएगा होएगा। शादी करना चाह रहे हैं, कम से कम जो शादी कर रही है उसको या कम से कम उसके बाप को राजी होना चाहिए, ठीक है। ये सब की तो दुआ चल रही है, जो चीज आप और खुदा के दरमियान है जो बगैर किसी रुकावट के मिल सकती है उसकी दुआ ही नहीं होती, वहां पे तो रुकावट ही नहीं है ना। आप ईमान मांग रहे हैं, ईमान देने में अल्लाह को मोहताज है कोई कि भाई फलां के जरिए से ही दूंगा, आपके दिल को मुनव्वर करना है, आपके गुनाहों को बख्शना है, ये कोई वास्ते की जरूरत है क्या अल्लाह को। वो दुआएं नहीं करते जो डायरेक्टली मिल सकती, मैं नहीं कहता कि वो दुआ मत करें, ठीक है वो दुआ मत करें ना, अल्लाह भी नहीं कहता कि वो दुआ ना करें, मैं कह रहा हूं प्रायोरिटी किसको देंगे आप, प्रिफरेंस किसको देंगे आप, औलवियत किसको देंगे आप। ये चीज दुआ कैसे करना सीखने के लिए हुक्म जा रहे हैं, ठीक है। चीजें छोटी छोटी हैं, चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन उसको समझना उतना आसान नहीं है जब तक कि अपनी अपने आप को थोड़ा जुदा कर कर न सोचे और अल्लाह की रहमत में अपने आप को हमेशा डूबा हुआ एहसास न करे, फिक्र रोटी की न करे, रोटी वो पहुंचाएगा। रसूल को नहीं कहता क्या, ए रसूल हमने तुमको क्या क्या नहीं दिया, वजद का वाह वाह वा, वजद का वॉलन मोहताज हिदायत, हमको सबको हाजत है ना हिदायत की, तो रसूल को कह रहा है हमसे उसका क्या ताल्लुक। रसूल को इसलिए कह रहा है कि रसूल मिज़दाक बन रहे हैं और मिज़दाक तक आयत महदूद नहीं होती, ये सीखने को आपको हुक्म जाना है कि कोई आयत का मिज़दाक उसका मुखसिस नहीं होता, उसे मखसूस नहीं, वो आपके लिए भी है, बात रसूल के जरिए से हो रही है ताकि वो वाज़े अज़हर मिसाल बन जाए और आप पर, वरना आपके लिए क्या हिदायत है, रसूल को किया मेरे को करेगा नहीं करेगा नहीं मालूम, तो ठीक है मैं वो रास्ता चलूं क्यों, ठीक है। तो हिदायत की मादी मदद की या पूरी जिम्मेदारी लेकर कह रहा है मेरे होकर बतला दो, हम कहते हैं पहले वो हम पक्का कर लें तो हम तेरे होते हैं, ये अल्लाह को शर्त शय पसंद नहीं आता, मैं इस शर्त पर तेरा हो जाऊंगा, ये दुनियावी चीजों में अच्छा लगता है, ये शर्त पर हम आपकी बात मान लेंगे, चाहे वो मोहब्बत हो या सियासत, ना अल्लाह इस किस्म की मोहब्बत पसंद करता है ना इस किस्म की सियासत पसंद करता है। और हमारे पास सबसे अच्छी मिसालें मौजूद हैं कि जो बगैर शर्त अल्लाह की खुर्बत के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोशिश करें, हमारे पास एक भी ऐसा लीडर नहीं है कि जिसके लिए हम ये शक करें कि उसने अपनी इलाही हरकत में कोताही की हो, दूसरों के पास ऐसी प्योर मिसालें नहीं है, युतहरकुम तथीरा वाली मिसालें नहीं है। तो सरमाया जो हमको मिला है वो बहुत ज्यादा है, एहसास की कमी है, आदमी के हाथ में हीरा हो, अगर वो समझे कि ये हीरा नहीं है तो उसको वो क्या करेगा, कहीं भी फेंक देगा, कोई उठाकर ले जाता है तो ले जाए, मुझे क्या करना है। हमने अहले बैत की तालीमात के साथ यही किया है, घर की मुर्गी दाल बराबर समझा और उनके तालीमात को सुबुक समझा और हर चीज की तरफ दौड़े सिवाय उनके तालीमात के लिए। आप लोग उसको रविश को तोड़कर वो काम के लिए जा रहे हैं जो हकीकतन करना चाहिए। आखिरी और दो मिनट लूंगा। तीन सतह पर जिंदगी होती है, एक तो बदनी सतह पर, दूसरे इल्मी सतह पर, साइंस के हद तक आप उस इल्म को लेकर चले। फारसी में जब इल्म कहा जाएगा आप ईरान जाएंगे, इल्म से मुराद वो लोग साइंस लेते हैं, साइंस लेते हैं यानी मादी उलूम लेते हैं, जाहिरी तौर के ऊपर जब इस्तेमाल करते हैं फारसी जबान में आजकल। उसके फिर आगे का मरहला होता है जो रूह का मरहला होता है, तो एक बदन, एक दिमाग माइंड और एक रूह स्पिरिट सोल जो भी बोलिए। जो आदमी एक लेवल पर रहता है जिसके उसको इल्म में मादी से भी रब्त नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, बिल्कुल इल्म से जाहिल है। जानवर वाली सतह का उसको एहसास है, वो उससे आगे नहीं सोच सकता। उसके बाद का मरहला आता है जो मरहला है दिमाग को इस्तेमाल करने का, बदन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा मुहिम है, वो आदमी जो दिमाग को इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो भी अगर दिमाग को उससे ऊपर वाले सतह तक नहीं ले जाता है सोच में अपनी, मैं अभी ले आ रहा हूं बस, तो वो फिर पलट के मादियत की तरफ आता है। थोड़ी सी तफसील करूंगा। निकला कुछ नहीं जानता था, ठीक है, आयत है ना, खलकाकुम अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया, यहां से निकला कुछ इसी पे बाकी रह गए, ना जाना कुछ ना थोड़ी सी चीजें जान ली जो आमतौर पे जानवर भी बड़ा होकर जान लेता है, ठीक है, अपनी मादी ख्वाहिशात, अपनी शहवी ख्वाहिशात, ये पूरी उसने मुकम्मल कर ली। एक ने नहीं, उसने आगे बढ़ा, मादी उलूम उसने हासिल किए, ठीक है, और उन मादी उलूम को से पैसा भी मिला, शोहरत भी मिली। ऐसी मिसालें कुरान में आपको कारून की मिलती है कि उन्होंने खूब अपने इल्म कीमिया के जरिए से कमाया और एहसास किया कि यह मेरे इल्म का नतीजा है। उस इल्म की हकीकत से वो आगाह नहीं हो सके कि यह इल्म मुझे मिला क्यों, मेरी खिलकत उस शक्ल की हुई थी कि मुझ में यह इल्म समोया जा सकता था और मुझे अल्लाह ताला ने यह इल्म दिया। और जब अल्लाह ने रसूल के जरिए से तकाजा किया कि तुम अपनी ये दौलत से मुंह मत फेरना, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह ने तुम पर अच्छाई की है, एहसान किया है, एहसन कमा एहसन अल्लाह इलैक, जैसा अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है एहसन अल्लाह इलैक, तुम भी दूसरों पर करो, तो उनको पसंद नहीं आने लगा क्योंकि वो पैसा उनकी शिनाख्त बन गई और पैसा वो कैफियत की चीज है कि जो आपको पलटा कर इल्म से फिर मादियत की तरफ ला देता है। तो हुआ क्या, हम जब मादियत की बात करते हैं 34 साल में हमने जो देखा, एकदम मादियत की तरफ, मटेरियलिज्म की तरफ पुश हुआ, उलूम बढ़े, हर अलग अलग किस्म की चीजें टेक्नोलॉजी की शक्ल में आने लगी। कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे कि हम फोन पर बात करते हुए फोटो देख सकेंगे तरफ की, आज तो बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं, पैसा भी नहीं हो रहा है। हम उस जमाने की बात कर रहे हैं कि आदमी अगर 3 मिनट बात करता अमेरिका को तो उसकी 1 महीने की तनख्वाह चली जाती, 3 मिनट बात करने पर, 3 मिनट बात करने पर 1 महीने की तनख्वाह खत्म हो जाती। तो लोग मरने की खबर देने के लिए, इस किस्म की इमरजेंसी के लिए फोन इस्तेमाल करते थे, इतना महंगा था, ठीक, आज ये बिल्कुल हो गया। तो हुआ क्या, जैसे ही ये उलूम, साइंस से मुराद ले रहा हूं, इलाही याद की बात नहीं कर रहा हूं, उलूम यहां तक पहुंचे और फिर वो आगे वाली हरकत नहीं हुई, पलटकर फिर और मादी होते गए, तो आपका दायरा शुरू हुआ ला तअलमूना पर और खत्म हुआ ला तअलमून पर। आपने वो हरकतें की हैं कि अगर आप दूर से फोटो लेकर देखें तो अकल की वहां जरूरत नहीं होती। आज के जो मॉडर्न डांस हैं, ये मॉडर्न म्यूजिक है, इसके अंदर सिवाय मादी शहवतों को आगे बढ़ाना, और अगर कोई नहीं जानता हो तो एक अलग किस्म का बंदर नजर आएगा आदमी, जो जिसकी इतनी तारीफ होती है और इतना उसको बड़ा बतलाया जाता है। तो गए निकले थे मादियत से, उलूम के जरिए से पलटकर मादियत की तरफ वापस आ गए। अल्लाह इनको इस मकसद के लिए खल्क नहीं किया था। उलिल अलबाब उन लोगों को अल्लाह कह रहा है, अल्लज़ीना यतफक्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ठीक है, उन लोगों को। इसलिए उलिल अलबाब कौन है कि जो खल्क़े समावात और अर्ज के बारे में सोचते हैं। ये चीज जब सोचते हैं तो अपनी यकीन को अल्लाह पर जाहिर करते हैं तो अल्लाह उसको कोट करता है, मा खलकता हाजा बातिला, यानी अल्लाह को सर्टिफिकेट दे रहा है और अल्लाह तारीफ कर रहा है कि मैंने तुझे इसलिए बनाया था, तुझे दिया था दिमाग, दिया था ब्रेन, दिया था ताकि तू खल्क समावात और अर्ज पर फिक्र करे, खल्क पर, और फिर कहे कि ये तूने बातिल खल्क नहीं किया, यानी मतलब आजमाइश के लिए खल्क किया है। आगे किया है फकीना अजाबन नार, तू हमें जहन्नम की आग से बचा ले, हम तो जहन्नम की आग के अतराफ हमारे उसमें जी रहे हैं, तो हमको तू ये समझ दे दिया कि हम खल्क समावात और अर्ज के बारे में सोच सकते हैं और पलट कर कह सकते हैं कि तूने बातिल नहीं की खल्क किया। सुबहाना का तू तो पाक है कि तू ये कोई चीज बातिल खल्क करे। जब अल्लाह की पाकिजगी का यकीन हो जाता है तो मादियत कोई माना नहीं रखती, वसीला बन जाती है, बदन वसीला बन जाता है, दिमाग वसीला बन जाता है, और उसके बाद जो रूह उस दिमाग से वो काम लेती है जो अल्लाह चाहता है कि ले, क्योंकि अल्लाह से जुड़ जाती है, बदन से वो काम लेती है कि जो अल्लाह चाहता है कि ले, तो बदन और दिमाग दोनों अल्लाह की रास्ते पर चलने के लिए मुमिद व मुआविन साबित होते हैं, और इंसान एक के बाद एक उन मराहल को तय करने लगता है कि जो एक मादी और जाहिरी इल्म रखने वाले साइंटिस्ट की काब में भी नहीं आ सकते, और उसी के जरिए से पलटकर इसी मादे को देखता है तो उसके खल्क की तरफ जाता है, और खल्क के बारे में मालूम करना आज के जमाने भी सबसे मुश्किल इल्म है। ये दुनिया इस बनी कैसे, अल्लाह कहता है वहां के? आपको फकत कयामत तक सोचने का नहीं है, आपको इब्तिदा के भी सोचना, क्यों कि वल अव्वल वल आखिर व जाहिर वल बातिन, ये सब इंट्रोड्यूस इसलिए करा रहा है कि तुम पलट कर जाओगे खिलकत के तो फिर मुझे पाओगे, कयामत का भी सोचोगे तो मुझे पाओगे। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तो तुम्हारे साथ है कहीं पर भी तुम रहो। अब क्या चाहिए, खुदा छोड़ना नहीं चाहता, हम छोड़ के भागना चाहते हैं, जो हमसे भागते हैं हम उनके पीछे भागते हैं, दुनिया हमसे दूर होती है हम दुनिया के पीछे लगे रहते हैं, और दुनिया का खालिक हमारे साथ साथ आना चाहता है। भाई हुआ माँ को महीना माँ कहूं दूंगा मतलब मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूं, हम कहते हैं हमको नहीं चाहिए। ये इल्म का नतीजा है या जहल का नतीजा है, गुरूर का नतीजा है या एहसान को कबूल करने का नतीजा है, उसके बनकर उससे पीछा छुड़ाने की ख्वाहिश। अगर कोई अपने मां बाप को छोड़ दे जिन्होंने उसको बड़ा किया हो और ऐसी हालत में छोड़े कि वो लोग मोहताज हों, तो आप और मैं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? कोई लफ्ज भी नहीं बना होगा कि जो उसको पूरी तरीके से बयान कर सके, तरसीम कर सके, ठीक है। अब बोलिए खुदा को हम वही करके छोड़ रहे हैं, फकत यह है कि वो मोहताज नहीं है, गरज हमारी थी ना कि उसकी। माँ बाप कभी हो सकता है कि इसी हालत में आ जाए कि उनके लिए कोई ना हो देखने वाला, फकत इसलिए कि अल्लाह को देखने वाले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को छोड़ देना चाहिए। बोलिए, वो तभी हो सकता है जब हम सोचते हैं कि अल्लाह को हमको देखने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को हमको देखने की जरूरत नहीं है जब हम सोचते हैं ना, तब हम ये करते हैं, क्योंकि वो तो मोहताज नहीं है। हुवल गनी वानतुमुल फकरा, ठीक, तो उसकी गिना हमारा फक्र हमको अगर एहसास हो जाए तो उसका हम साथ छोड़ें ना, ना उसके गिना का यकीन है ना अपने फक्र का यकीन है। चौपट हो गया है सब, उलट पुलट हो गया है, हलत मलत हो गया है। ये सब चीजों से निकलने के लिए आप लोग घूम जा रहे हैं। अल्लाह आप लोग को मुवफ़क़ करे और कामयाब करे, और आप लोगों के दिल में जो रोशनी है उसमें और इजाफा हो, और असातिज़ा से जो आप लोग वहां सीखेंगे, कुंभ का बेहतरीन माहौल है इबादतों के लिए और तालीम के लिए, बेहतरीन माहौल है, पाक माहौल है, उस माहौल से फायदा उठाइए। वो माहौल पलट के आकर वापस हमको यहां पर मिलने वाला नहीं है। इतने मजबूत होके आइए कि अगर आपको बिल्कुल उसके मुकाबिल माहौल में डाल दिया जाए तो वहां पर आप तासीर छोड़ेंगे, असर नहीं लेंगे, अपना असर छोड़ेंगे, असर नहीं लेंगे। वो अगर कैफियत के बगैर अगर आप वापस आ गए तो घुल जाएंगे हिंदुस्तान में आकर, और वही दौर हो जाएगी। काफिर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें है आफाक। वो वाला मोमिन बन के, ये दूसरी आखिरी जुमला, कुरान की अहमियत को समझिए। मौला ने नजुल बलागा में कहा है, हम तो इन्नी तारिकुम फीकुम सखलैन कहते हैं, सखले अव्वल जो है वो सखले अव्वल कुरान है। तो और यकीनन जब आप कुरान की तरफ जाएंगे, मेहनत करेंगे, हौजे में कुरान को बगैर अहले बैत के नहीं पेश किया जाता, तो अहले बैत की ही कुरानी रविश को आप वहां पर हासिल कर सकेंगे। तो कुरान को मरकज बनाएं। इकबाल का कुरान के बारे में एक जो शेर है पढ़ देता हूं, फाशमी गोयम आंचे दर दिल मुजमरास्त इनकी तौबी नीस्त चीजें दीगरास्त। खुलकर बोल देता हूं कि जो दिल में पोशीदा है यह कुरान किताब नहीं है, कुछ और चीज है। उसकी अहमियत समझे, हमको बहुत देर में समझ में आई, आप लोग अभी जवान हैं, उसको समझ लें, बहुत है उसमें देने के लिए। इसलिए मैंने कुरान की आयतें ही ज्यादा आप लोग के सामने तिलावत की, बहुत है देने के लिए। तफक्कुर की जरूरत है, और एक दूसरे से शेयर कीजिए जो कि देते हैं, इल्म बांटने से बढ़ता है। याद रखिए, आपस में रवाबित बढ़ाइए, मोहब्बतें बढ़ाइए, उल्फतें बढ़ाइए। इल्म को ये मिजाज की जरूरत है, हसद गुस्से में इल्म हासिल नहीं होता, इलाही इल्म और भी नहीं होता। तो आप लोग की भाईचारगी बहुत ही जरूरी है। हम सब कुरान में पढ़ते हैं, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ये क्यों बनाया इख्वा? इसलिए बनाया कि रूही सफर में इख्वा के बगैर काम नहीं हो सकता है। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस सब। ये जुड़ना और जुड़ने के लिए अना से जदूर और दूसरे की मोहब्बत को बड़ा समझना। अपने से तो सभी मोहब्बत कर सकते हैं, दूसरे से मोहब्बत करना अल्लाह के लिए, ये रसूलों की और अइम्मा की खुसूसियत है। हम अगर उनके मानने वाले में हम में भी आ जाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वा आलि मुहम्मद।